आरवी पूरे रूम को नजरें घुमाकर देखने लगी। कितना बड़ा और आलीशान रूम था वो, एक से एक एंटीक चीजों से सजाया गया। गेट के सामने ही बड़ा सा किंग साइज बेड रखा हुआ था, जिस पर वाइट बेडशीट और कुछ वाइट पिलो सलीके से सेट किए हुए थे। बेड की दोनों तरफ छोटा सा टेबल था जिस पर लैंप रखा हुआ था। बेड के पीछे की दीवार पर खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई थी, जिसके ऊपर काफी सारी तस्वीरें लगाई गई थी। राइट हैंड साइड दो वुड्स अलमीरा रखे हुए थे जो काफी बड़े और सुंदर लग रहे थे। उसके साइड में एक डोर था और उसके बाद कांच का डोर भी था जो बालकनी में खुलता था, जिसकी दूसरी तरफ पूल था। उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधों को लगाया गया था। वो नज़ारा भी कमाल का था। बेड के दाईं तरफ वॉशरूम था और उसके बगल में चेंजिंग रूम मतलब वॉक इन कैबिनेट था। बेड के सामने कुछ दूरी पर कांच का टेबल रखा हुआ था। उसके साइड में बड़ा सा सोफा सेट लगाया हुआ था। सब कुछ था उस कमरे में। देखने पर ही पता चल रहा था कि यहाँ रहने वाले की रेप्यूटेशन क्या है। आरवी पहली बार ये सब देख रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहाँ ऐसी ऐसी चीजें रखी थी जिसका नाम तक वो नहीं जानती थी। वो कुछ पल खामोशी से खुद को शीशे में देखती रही। दुल्हन का लाल जोड़ा, मांग में भरा सिंदूर, गले में पहना मंगलसूत्र उसे चीख चीख कर ये बता रहा था कि अब वो किसी और की हो गई है, किसी की पत्नी है। पर किसकी? उस शख्स की जिसने तो इस शादी को मानने से ही इनकार कर दिया है, जिसके लिए ना ही उसका कोई अस्तित्व है ना ही इस रिश्ते का कोई मोल है। उसके कानों में शान के कहे शब्द गूंज उठे। आंखें नम हो गई, पर फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। आंखों के सामने आंशिका का मासूम सा चेहरा आ गया। उसका इतने प्यार से उसे मम्मा कहना, जिसे सुनकर एक पल को उसे भी लगा जैसे वो उसकी माँ ही हो। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहा, तू हार नहीं मान सकती, जानती तो है तेरी खुशी में ही तेरी माँ की खुशी है। तुझे उनके लिए जीना होगा, लड़ना होगा अपनी किस्मत से। अगर ये रिश्ता जुड़ा है तो तुझे इसे निभाना होगा। अगर वो तुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं देते तो क्या हुआ? तू अब भी आंशिका की माँ है और तुझसे इस रिश्ते को कोई नहीं छीन सकता। तू अब उसके लिए यहाँ रहेगी, आज से, अभी से। तेरी जिंदगी का बस यही मकसद है कि तुझे उस पर अपनी सारी ममता लुटानी है, उस मासूम को माँ का प्यार देना है। जाने कब से वो इस प्यार के लिए तरस रही है। उसने तुझे अपनी माँ का दर्जा दिया है और अब तेरी बारी है उसे बेटी का प्यार देने की। अब वो उस तरफ चली गई जहाँ उसके बैग्स रखे थे। फिर उसने अपना बैग उठाकर उसे बेड पर रख दिया, कपड़े वगैरह निकाले और बाथरूम ले चली गई। कुछ देर बाद वो नहा कर आई और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। अपने छोटे वाले बैग से कुछ सामान निकाला और तैयार होने लगी। कुछ देर में वो तैयार हो गई थी। उसने एक बार फिर खुद को शीशे में देखा। लाइट रेड कलर का अम्ब्रेला सूट, उस पर येलो लेगी और रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन का दुपट्टा जिसको गर्दन से चिपका कर डाला हुआ था। उसके नीचे से गले में पहना मंगलसूत्र झांक रहा था। मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया हुआ था। घुंघरेले बालों को एक चुटिया में बांधा हुआ था। हाथों में दो चार चूड़ियां डाली हुई थी। एकदम सिंपल थी वो और कुछ नहीं किया हुआ था, पर उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वो इतने में ही कयामत ढा रही थी। वो जैसे ही पलटी उसके रूम का दरवाजा खुल गया। सामने छोटी सी आंशिका खली थी, लबों पर प्यारी सी मुस्कान और आंखों में चमक लिए वो आरवी को देख रही थी। उसे देखते ही आरवी के लबों पर भी मुस्कान ठहर गई। उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वहां क्या कर रही हैं आप? इधर आइए, मम्मा दादी ने आपको नीचे बुलाया है, आंशिका ने मुस्कुराकर कहा। आरवी ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और वहां से बाहर चली गई। उसके वहां से निकलते ही ड्रेसिंग टेबल के बगल वाले रूम का दरवाजा खुला और शान ने बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर जैसे ही उसकी नजरें ड्रेसिंग टेबल पर रखे गहनों और आरवी के सामान पर गई, उसका चेहरा गुस्सा से लाल हो उठा। आंखें लावे जैसे धधकने लगी। वो गुस्से में उस तरफ बढ़ा जहां आरवी के बैग्स रखे थे। वो उन्हें उठाकर फेंकने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने सामान वहीं पटक दिया। कबर्ड से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में घुस गया। वहीं दूसरी तरफ आरवी आंशिका के साथ नीचे चली गई। अर्पिता जी नीचे हॉल में ही उसका इंतजार कर रही थी। आरवी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, फिर झुककर उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने उसको रोक दिया और प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, महादेव आपको दुनिया की हर खुशी दे, सदा सुहागन रहो और यूं ही मुस्कुराती अपनी मुस्कान से हमारे घर को महकाती रहो। उनकी बात सुनकर आरवी हल्के से मुस्कुरा दी। अब उन्होंने उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये क्या बेटा, आपने तो ना गले में कुछ पहना है ना ही कान में, हाथ भी कैसे सुने लग रहे हैं, पैर भी खाली हैं, नई नवेली दुल्हन है आप, आपको देखकर पता चलना चाहिए ना कि आप हमारे घर की बहू हैं। बड़ी माँ, मुझे इन सब की आदत नहीं है, माँ ने कहा था शादी के बाद एक लड़की को कभी भी सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं छोड़ना चाहिए, हाथ खाली नहीं रहने चाहिए, तो मैंने कुछ चूड़ियाँ डाल ली, मंगलसूत्र पहना हुआ है और सिंदूर भी लगाया हुआ है, इससे ज्यादा करूंगी तो मैं कम्फर्टेबल नहीं रह पाऊंगी, अगर फिर भी आप कहेंगी तो मैं सब पहन लेती हूँ। उसने इतने प्यार से और मासूमियत से अपनी बात कही कि अर्पिता जी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो रहने दीजिए, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। आप जैसी हैं वैसी ही बहुत अच्छी लग रही हैं। सही कहा था उन्होंने, और आपने उनकी बात और इस रिश्ते का मान रखा है। आपकी समझदारी देखकर आप हमें और भी ज्यादा पसंद आ गई हैं। अब तो हमें और भी विश्वास हो गया है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। बस एक काम कर लीजिएगा, इन चूड़ियों के साथ उन कंगनों को भी पहन लीजिएगा जो हमने शादी के वक्त आपको पहनाए थे। वो हमारे खानदानी कंगन हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहू उन्हें हमेशा पहन कर रखे। मैं अभी पहन कर आती हूँ, आरवी ने इतना कहकर जाने के लिए कदम उठाया, पर अर्पिता जी ने उसे रोकते हुए कहा, बाद में पहन लीजिएगा, अभी हमारे साथ चलिए, हमें आपको बहुत कुछ बताना है और किसी से मिलवाना भी है।